संबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्
महाधवलविख्यातम् महाबन्धम्
नमामि। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में द्वितीय जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 50 पर आ गए, 50। अभी हम यहाँ काल की बात चल रही, बंध काल, यानी लगातार उत्कृष्ट बंध होता रहे तो कितने काल तक होगा, कम से कम कितने काल तक, अधिक से अधिक कितने काल तक। तो ओग में हमने देखा था कि जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख उत्कृष्ट बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, उससे ज्यादा नहीं। फिर हमने देखा था कि अनुत्कृष्ट का बंध लगातार कितने समय तक होता रहा, तो जघन्य से तो अंतर्मुख, जघन्य से अंतर्मुख, और उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि कोई उत्कृष्ट बंध किया उसने पंचेन्द्रिय में और एकेन्द्रिय में चला गया, वो की अपेक्षा ये बात हो रही है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद आदेश में हम देख रहे थे नारकियों में हमने देखा था कि उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ऐसा ही है, जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुख, अनुत्कृष्ट का वेरिएशन है। अनुत्कृष्ट में कैसे सोचना कि ये तो इस मार्गणा का काल कितना है, उससे ज्यादा तो इसका काल नहीं हो सकता। कोई भी जीव नरक में अधिक से अधिक काल रहेगा तो 33 सागर तक, और उसने उत्कृष्ट बंध किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही किया, तो 33 सागर उसका अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होगा। पर अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना होगा, तो एक समय, वो कैसे होगा कि किसी ने उत्कृष्ट बंध किया, उसके बाद एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बंध करके मर गया। ओग में तो अनुत्कृष्ट का एक समय घटित हो ही नहीं सकता, क्योंकि लगातार अनुत्कृष्ट का बंध अंतर्मुर्त तो करेगा ही करेगा वापस उत्कृष्ट में लौटने के पहले। परंतु मार्गणा में हो सकता है कि शुरुआत हुई और मरण होगा, तो ये नरक में हमने देखा था। तिर्यंचो में भी ऐसा ही हमने देखा था, सामान्य तिर्यंचो में ओग के समान वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित हो सकता है, इसलिए ओग के समान था। पंचेन्द्रिय तिर्यंचो में तो उनके जो उत्कृष्ट के लिए वही रूल सब जगह, परंतु अनुत्कृष्ट के लिए अपनी अपनी स्थिति प्रमाण उसका उत्कृष्ट काल होगा, जघन्य काल अंतर्मुर्त यानी वो एक समय भी घटित होगा जब मार्गणा बदल जाएगी, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। ऐसे हमने तिरियंच त्रिक में, मनुष्य त्रिक में वगैरह वगैरह सब में देखा था। फिर हमने इंद्रिय मार्गणा में देखा था 49 पृष्ठ पर कि वहां एकेंद्रियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल कितना है तो अंतर्मुख, जैसे अन्यत्र घटित किया था। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मुख, जैसे हमने ओग में भी देखा था, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल यानी एकेंद्रियों में रहने का काल तो लंबा है, फिर भी पूरा अनुत्कृष्ट का ही बंद नहीं करेगा, असंख्यात लोक प्रमाण काल जाने के बाद वो फिर दोबारा उत्कृष्ट करेगा ही करेगा, ये बात यहां तो ठीक है। एकेंद्रीय की स्थिति कितनी है, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, परंतु उत्कृष्ट स्थिति बंध का सॉरी अनुत्कृष्ट का काल यानी उत्कृष्ट का अंतर जिसको हम कह सकते हैं असंख्यात लोग को ना, यानी वापस लौटकर आएगा ही उत्कृष्ट बंद करेगा। हाँ, तो सूक्ष्म एक इंद्रिय में रहा इतना काल और बादर में आया तो इतने काल के बाद तो करेगा ही करेगा।
वो मैंने कहा असंख्यात
वहां इसलिए किया कि ओग में हमने पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट करके एक इंद्रिय में आया हुआ लिया, यहाँ एक इंद्रिय के योग्य उत्कृष्ट किया। एक इंद्रिय की अपेक्षा लेंगे परंतु वो ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार अनुत्कृष्ट करता रहे, वो उत्कृष्ट करेगा ही करेगा, ये घटित होता है इससे। कहाँ पर ओग में कैसा होगा, क्योंकि ओग में एक इंद्रिय का तो उत्कृष्ट एक सागर है और पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर है, वो सत्तर कोड़ा कोड़ी लेना वहाँ अनुत्कृष्ट के लिए आप अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट का आप कह रहे हैं। बराबर देखो देखो आपका ये कहना है यहाँ असंख्यात लोक लेते हैं क्योंकि असंख्यात लोक काल जाने के बाद वो सागर वाली स्थिति बंधेगी परंतु वो ओग की अपेक्षा अनुत्कृष्ट ही कहलाएगी। यानी एक इंद्रिय के लिए भले उत्कृष्ट है परंतु वो तो ओग में तो उसको अनुत्कृष्ट ही कहेंगे। फिर हमने देखा बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट का स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय होता है। अब बादर एक इंद्रिय में यानी वो बादर एक इंद्रिय में हाँ उसने उत्कृष्ट किया और बाद में अनुत्कृष्ट का किया और फिर अन्य पर्याय में चला गया तो एक समय घटित है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। यानी बादर एक इंद्रिय वाला जीव है सूक्ष्म में चला जाएगा उसकी मार्गना बदल जाएगी। यानी बादर एक इंद्रियों में रहते हुए उत्कृष्ट बंध कौन करेगा तो पर्याप्त करेगा न, पर अपर्याप्त में लगातार काल अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है तो यानी इतने काल के बाद वो उत्कृष्ट बंध करेगा ये अर्थ होता है। बादर एक इंद्रियों में रहते हुए उत्कृष्ट का बंध का अंगुल के असंख्यात भाग काल में तो बंध करेगा ही करेगा। एक इंद्रियों में उसको असंख्यात लोग कैसे कहा था इतना लंबा काल तो सूक्ष्म में चला गया था इसलिए। फिर से दोबारा सुनो एक इंद्रिय में रहते हुए अभी वो उसको अन्य कहीं किसी पर्याय में भेजना नहीं है और वो उत्कृष्ट बंधन नहीं करे तो उत्कृष्ट बंध कौन करता है तो एक इंद्रिय पर्याप्त करता है बादर एक इंद्रिय पर्याप्त। अब हमने एक इंद्रिय इन जनरल बात की, किसी ने बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट बंध किया और बाद में दोबारा बादर में ही रहता वो तो अंगुल के असंख्यात विभाग में दोबारा वो उत्कृष्ट बंध करता परंतु उसने कहे वो तो सूक्ष्म में चला गया तो लगातार सूक्ष्म में कितने काल तक रहेगा असंख्यात लोग, वापस बादर में आएगा तो वो उत्कृष्ट बंध इतने काल में तो करेगा ही करेगा अंगुल के असंख्यात विभाग। अब कहते वो बादर एक इंद्रिय ही है यानी सूक्ष्म में जाने का सवाल नहीं है तो बादर एक इंद्रिय में रहते हुए कभी उत्कृष्ट बंध किया और फिर लगातार अनुत्कृष्ट करता रहा तो अधिक से अधिक कितने काल तक करेगा तो अंगुल के असंख्य करेगा। अभी तो सूक्ष्म में जाने का सवाल नहीं, आप कहेंगे अपर्याप्त में भेजो, अपर्याप्त का काल तो अंतर्मूर्त है तो उसको भी नहीं। यानी बादर एक इंद्रिय में रहते हुए एक बार उत्कृष्ट बंध करने के बाद अंगुल के असंख्यात भाग काल में दोबारा उत्कृष्ट बंध करेगा ही करेगा। बादर में पर्याप्त पर्याप्त दोनों ले लेना, बीच बीच में कभी कभी पर्याप्त पर्याप्त करता रहेगा फिर भी उसके उत्कृष्ट बंध होगा ही होगा। बादर में रहने का काल अधिक भी होगा परंतु यहाँ उत्कृष्ट बंध की बात चल विशेषार्थ में उन्होंने बताया था कि यहाँ अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल है उसका अर्थ क्या है, वो पर्याय की स्थिति भले लंबी है परंतु इतने काल लौट कर वो फिर दोबारा उत्कृष्ट बंद होगा ही होगा उसे, ये बात बताने चाहिए।
हाँ
उन्होंने तो केवल इतना ही लिखा कि विचार नहीं है। नहीं, हमने चर्चा की ना आपस में, तो ये तो थोड़ी बात हो जाती है स्पष्ट। अब देखो, ये बादर एकेंद्रीय की बात की। अब बादर एकेंद्रीय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट सिद्धिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। क्योंकि ये तो ठीक है, वो तो पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल लिया, वो तो अन्य में चला गया, दोबारा उत्कृष्ट किया इसलिए नहीं, परंतु वो पर्याय बदल गए इसको।
लेकिन पर्याप्त
तो उसको संख्या हजार कहा। पहले बादर एक इंद्रिय इतना ही कहा, कभी अपर्याप्त में गया फिर लौट के आया, कभी गया फिर लौट के आया, तो उसका काल तो पर्याप्त पर्याप्त में मिलकर अंगुल का संख्या तो अभाव हुआ।
केवल पर्याप्त ही है बादर पर्याप्त का, एक पर्याप्त दूसरा पर्याप्त हो सकता
है, तो संख्या हजार वर्ष होता है। पर्याप्त में से पर्याप्त होता रहे लगातार तो संख्या हजार वर्ष
का है,
है? ए वो 22,000 वर्ष है, 22,000 वर्ष और कितने बार करो ना, हजारों बार करो तो भी संख्या ही होगा ना। अनेक कोड़ा कोड़ी को भी संख्या हजार का है। हमने इसमें देखा था ना, नवे गुणस्थान की बात आती है, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी बार होता है तो भी हम कहेंगे हजारों बार होता है। हाँ हाँ, तो उसको संख्यात हजार कहेंगे, वो तो सामान्य टर्मिनोलॉजी है।
लेकिन संख्यात हजार इतने असंख्यात होने से पहले वो अपर्याप्त हो जाएगा।
हाँ, यानी वो संख्यात हजार यथायोग्य समझना उसका। अब बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त में रहते हुए अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, वो तो सर्वत्र घटित होता है, मार्गणा बदल गए, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, क्योंकि लगातार अपर्याप्तों में रहा तो भी अंतर्मुहूर्त में उसके सभी अपर्याप्त भोग पूरे हो जाते। सूक्ष्म एकेंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, यहां एक समय नहीं लिया हो, एक इंद्रिय में एक समय लिया, ऊपर क्या लिखा है? यानी सूक्ष्म एकेंद्रियों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मुक्त, समझना है क्या कहना चाहते
हैं? ऐसे कहना है कि मरने के पहले पश्चात पहले के समय में वो
अंतर देख लो इसका, तो हमें क्लैरिटी होगी। थोड़ा आगे का देख लेते हैं, इतना हुआ नहीं है मगर फिर भी थोड़ा अंतर 59 के बाद कहीं शुरू हो जाता है एक इंद्रिय में और सूक्ष्म में देख 61 में तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त एक इंद्रियों में, हाँ यहाँ शुरू हुआ है एक इंद्रियों में सात कर्मों के, मैं एक वो अंतर पढ़ रही हूँ मैं 61 के नीचे से दूसरी लाइन, पहले एक इंद्रिय की पूछ ले देख ले तू, हाँ सूक्ष्म की एक दूसरे में मैं एक इंद्रिय की पढ़ रही हूँ। उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण, जो नहीं नहीं जो हमने अनुत्कृष्ट का काल देखा था बरोबर। अब आगे देखते हैं 62 पेज पर आना, बाकी तो छोड़ दो। बादर एक इंद्रियों में पढ़ेंगे अभी, देखो बादर एक इंद्रियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट सिद्धिबंध का जघन्य, इस चौथी लाइन 62 पेज पर चौथी लाइन, बादर एक इंद्रियों में रहते हुए की बात है। सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है जो ओघ में भी घटित होता है और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। बादर में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है वो है ना पत्रावली आपके पास, असंख्यात लोक होगा बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट काल, बादर एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति अंगुल का संख्यात वही यहाँ लिया, ये बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट काल ही लिया अंगुल का संख्यात। यहाँ पर भी हमने देखा था ना ये बादर एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल।
टेक्निक क्या है,
क्रॉस चेकिंग जो कर रहे हैं ये है अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल हमें उत्कृष्ट बंध के अंतर से पता चलेगा। यहाँ हमने सूक्ष्म एकेंद्रियों में कुछ अपना कंफ्यूजन चल रहा था इसलिए हम सभी पूरा फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं सूक्ष्म को, सूक्ष्म एकेंद्रिय मिला आपको बीच में ही है। सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण।
ये तो सूक्ष्म में रहते हैं वो हम लोग अभी हम लोग की जो बात है अभी एक समय की बात है वो गर्व की अपेक्षा हम लोग सभी जगह
मरण की अपेक्षा जो घटित कर रहे थे
क्योंकि बाकी सभी कल हमने अपने एक समय देखा मरण
ये ईश्वर से अंतर में वो घटित नहीं होगा क्योंकि अंतर नहीं क्योंकि काल में घटित होगा पर्याय बदलने से अंतर में वो बात नहीं घटित होगी यानी ये यहाँ पढ़ने से भी वो बात सिद्ध नहीं हो रही है। ख्याल में क्या कहने थे पर्याय के अंत में उत्कृष्ट बंद किया फिर एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया और मरण हुआ तब तो एक समय का काल घटित होगा परंतु अंतर के लिए फिर दोबारा उत्कृष्ट करेंगे तब अंतर होगा वो हाँ तो उसको उसी पर्याय में रहना आवश्यक है वो तो बात यहाँ से घटित होती है।
लेकिन अपना जो प्रश्न था वो एक समय क्यों नहीं घटित किया है काल
हाँ
अनुत्कृष्ट जो सूक्ष्म अनुत्कृष्ट बंद जगह काल अंतर्मूर्त है ये हम सोच रहे थे कि एक समय क्यों नहीं घटित किया।
अब आते हैं अपने मूल पेज पर 49 पर ये मरण की अपेक्षा क्यों नहीं लगाई ये प्रश्न अनुत्तरित रहता है। क्या कहा अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है ये सूक्ष्म एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल है कैसे लिया। सूक्ष्म एकेंद्रिय का काल कितना है सूक्ष्म एकेंद्रिय असंख्यात लोक है फिर भी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात अभाव बताए ऊपर भी वही है ना बादर इंद्रिय अनुकस बादर इंद्रिय बजत पजत सूम इंद्रिय अनुकस जहन्न अंतो मुहूर्त उपकस अंगुलस असंख्य जति बाबो आगे पढ़ेंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त को में अभी पर्याप्त में या अपर्याप्त में अलग अलग स्थिति उसके अंतर्मुख से ज्यादा नहीं होती है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है ऐसा वहाँ क्यों नहीं रही अपना अपना प्रश्न था।
ये मागड़ा चेंज नहीं हुआ ना अपने सूक्ष्म एकेंद्रीय से पर्याप्त अपर्याप्त हो वो भी उसने अनुत्कृष्ट भी किया मतलब जब सूक्ष्म में अंतिम समय उसने एक समय किया तो दूसरा भाव धारण किया फिर वह उत्कृष्ट नहीं किया उसने इमीडिएटली,
उसका मानगणा ही बदली तो उत्कृष्ट करे अनुत्कृष्ट उससे अपने को कुछ नहीं लेना, बदलो ना उसकी सूक्ष्म एकेंद्रिय के पर्याय के अंत में उत्कृष्ट किया बाद में अनुत्कृष्ट किया और मर गया,
बदलो
हाँ
बदलो आप बादल में ले जाओ तो ठीक है,
कहीं पर भी ले जाओ हमें कुछ लेना देना नहीं,
आप मेरे बादल में जाएगा
सूक्ष्म एक इंद्रिय मनुष्य में भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है,
एकदम खराब से खराब हो गए
खराब से खराब है इसलिए वो
इतना उत्कृष्ट
तो हम अनुत्कृष्ट करा रहे हैं ना,
अनुत्कृष्ट नहीं अनुत्कृष्ट तो एक समय घटित
नहीं
होगा,
उत्कृष्ट बंद करके एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया ऐसा हो मगर वो अपर्याप्तकों में तो हो गया, देखो देखो अपर्याप्तों में भी वही लिया देखो हाँ यही बात है, सूक्ष्म पर्याप्तकों में तो एक समय घटित हुआ क्योंकि वो अपर्याप्त में चला गया, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त मिला आपको, सूक्ष्म एक अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थिति बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये एक घटित होता है यानी वो निकृष्ट में निकृष्ट पर्याय है इसलिए वो तो यानी वो उसी पर्याय में अपर्याप्तकों में ये घटित होता है, अनुत्कृष्ट का जगन्य काल भी अंतर्मूर्त है,
क्या मतलब हुआ इसका,
इसका अर्थ हुआ वो मरण के समय उत्कृष्ट करके वो एक समय के लिए वो अनुत्कृष्ट नहीं होता ऐसा कुछ, अवस्था छोड़नी है तो लगातार अनुत्कृष्ट का बंद होता है ऐसा कुछ इसमें से निकलता है और कुछ ये विशेषा तो हमने कल पढ़ा था, नीचे द्विंद्रिय आदि का भी पढ़ा था हमने उसमें तो कोई अपने प्रश्न नहीं थे, फिर पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त उसकी भी बात देखी थी, ये सब कल विषय हुआ था अपने, अब नीचे पांच मनोयोगी की बात करें, ये तो निगोद में अटके थे फिर अच्छा अच्छा फिर वो पढ़ते पृथ्वी का एक की बात, ये 74 नंबर का फिर दोबारा पढ़ते पड़ेगा, पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल लोक के समान एक समय और अंतर होगा, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है पर्याय बदलने की अपेक्षा, उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है यानी उस विशिष्ट कायिक में रहने का उत्कृष्ट काल है, इन चारों के बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है,
कर्म स्थिति मतलब
सत्य कोड़ा कोड़ी सागर यानी एक किसी कायिक में रहना है तो की बात, काय बदल जाएगी एक इंद्रिय में भले रहे हो, पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक में लगातार रहने की बात चल रही ना, चारों के बादरों में वो पर्याप्त पर्याप्त दोनों लेना, अकेले पर्याप्त लेते तो हमने संख्या हजार वर्ष देखे, तो चारों के बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, इनके बादर पर्याप्त जीवों में अभी देखो बादर पर्याप्त लिए अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्या हजार वर्ष है यानी बादर पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल है, किसी एक एक कायिक में अलग अलग ले लिया उन्होंने, चार कायिकों की बात की वनस्पति को यहाँ छोड़ा है, उनके सूक्ष्म जीवों में अभी बादरों में तो बता दिया, अभी इन चारों के सूक्ष्म जीवों में अपने अपने कायिक में सूक्ष्म में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, तो ये उसकी स्थिति हुई ना सूक्ष्म की स्थिति। एक्चुअली असंख्यात लोग होता है ना सूक्ष्म में और कायिकों में, वो भी असंख्यात लोग ना। ना सूक्ष्म में मैंने क्या पूछा अभी? सूक्ष्म जीवों का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है ना, और कायिकों में मैंने पूछा पृथ्वी कायिक सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में रहने का उत्कृष्ट काल, सूक्ष्म अग्नि कायिक में रहने का उत्कृष्ट काल, असंख्यात लोक ही होगा वो। वो मुझे नहीं समझेगा, आप पढ़ के सुना कहा है वो अरविंद भाई की बात है ना, वो पत्रावली है वो आता है सब कुंडली आते
हैं दिया था, लेकिन वो धौला में जय धौला दिया था, अभी देना था।
अरे अभी अभी दिया था, महाबंध में ही दिया था, मैंने पहले भाग में ही होगी वो। अभी अभी पढ़ेंगे
सूक्ष्म सामान्य में असंख्यात लोग
देखा है। हाँ देखो एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय का काल कितना है तो असंख्यात लोग, फिर भी अनुत्कृष्ट का काल वहां पर भी अंगुल का असंख्यात भाग, यानी वहां उतने काल में फिर दोबारा उसको उत्कृष्ट बंद हो गए होगा।
यही बात
है और कुछ
नहीं।
अंगुल के असंख्यात विभाग में यानी भले सूक्ष्म में रहेंगे असंख्यात लोक काल तक, फिर भी अंगुल के असंख्यात काल जाने के बाद दोबारा उत्कृष्ट बंद होगा ही होगा।
चौक की अपेक्षा में असंख्यात लोक प्रमाण काल देता है
ओघ में, तो हमने असंख्यात पुद्गल परावर्तन देखा, एक इंद्रिय इन जनरल में हमने असंख्यात लोक देखा, तो सूक्ष्म में चला गया इसलिए। ये यहां तक तो बात घटित हुई है, आगे बढ़ेंगे कि नहीं। सूक्ष्म पर्याप्तकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूल, यानी लगातार पर्याप्त 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 होता रहे तो अंतर्मूल से ज्यादा नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय बताया सूक्ष्म में,
पर्याप्त है वो अपर्याप्त में जा गए, अपर्याप्त में जाने के टाइम वो एक समय घटित होगा उसका है ना। सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं लिया, अभी सूक्ष्म पर्याप्त लिया।
ये सूक्ष्म में अनुत्कृष्ट का पता है, उत्कृष्ट का पता ही नहीं है, वो अंतर्मूल ही मानना पड़ेगा।
वो तो सब जगह है एक समय और अंतर्मूल सब जगह घटित है, उसके लिए कुछ नहीं। वनस्पति कायिकों में, अभी ऊपर चार कायिक लिए थे, अब वनस्पति कायिकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का काल एक इंद्रिय के समान है, उत्कृष्ट का एक समय और अंतर्मूर्त और अनुत्कृष्ट का वनस्पति कायिक में है तो उसमें भी एक समय घटित होगा, तो जघन्य काल अंतर्मूर्ति एक इंद्रिय में अंतर्मूर्ति था, अंतर्मूर्ति है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक था। यहाँ वनस्पति की बात है, अभी यहाँ प्रत्येक भी है, साधारण भी है, बादर भी है, इसलिए यहाँ सोचो पड़ेगा। तो अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त, देखो वनस्पति कायिकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध काल एक इंद्रियों के समान है, उत्कृष्ट का तो एक समय और अंतर्मूर्त घटित होता है, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त से लेकर असंख्यात लोग। वनस्पति प्रत्येक कायिकों में, यानी वनस्पति कायिक प्रत्येक में, अभी उत्कृष्ट के कहने की जरूरत नहीं इसलिए नहीं बताई हर जगह, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण, जैसे हमने अन्य में देखा था अन्य कायिकों में, तो ये प्रत्येक में घटित होगा।
सामान्य के 70 कोड़ा
हाँ 70 कोड़ा वहाँ भी कर्म स्थिति लिखा है कि सत्तर कोड़ा कोड़ी लिखा, सत्तर कोड़ा कोड़ी लिखा। देखो समझ में आई बात, पहले हमने वनस्पति इन जनरल देखी, अभी उत्कृष्ट का बताने की जरूरत नहीं, अनुत्कृष्ट में ही फेरफार है। तो जघन्य अंतर्मूर्त है, अनुत्कृष्ट का काल जघन्य से अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से असंख्यात लोग, अनुत्कृष्ट का लगातार बंधन। अब वनस्पति का एक में प्रत्येक में अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, यहां जघन्य की बात नहीं लिखी है। तो सत्तर कोड़ा कोड़ी हो गए इनके पर्याप्तकों में। अभी वनस्पति जो प्रत्येक है, प्रत्येक वनस्पति के पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष। लगातार पर्याप्त में एक भाव किए तो दस हजार वर्ष होते हैं, लगातार करेंगे तो भी संख्यात हजार वर्ष। यानी वनस्पति हुई, प्रत्येक वनस्पति हुई, प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त हो गए। अब कहते हैं निगोध जीवों में ये कौन से वनस्पति साधारण हो गए, उक्त स्थिति बंध का काल एक इंद्रियों के समान है। जो हमने देखा था अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात। ये यहां तक हो गए। इतनी विशेषता है इनके बादरों में, यानी निगोध जीवों के बादरों में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, सत्र कोड़ा कोड़ी सा। वो क्या बादर निगोध का है उतना ही है, बादर निगोध का उत्कृष्ट सामान्य बादर अलग, सामान्य बादर तो अन्य का एक में, हाँ सामान्य बादर निगोध जैसे अन्य कायिकों में था वैसे यहाँ पर भी हो गया। अब सूक्ष्म वनस्पति कायिक, इसमें हमारा घोटाल चल रहा था ना, ऊपर ऊपर क्या लिया, बादल ले लिया। सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक के आगे निगोध लिखने की जरूरत नहीं, वो तो निगोध ही होते हैं सूक्ष्म वनस्पति कायिक। और सूक्ष्म निगोध अपर्याप्त
है,
जीवों को छोड़कर शेष अपर्याप्त जीवों में, क्योंकि ऊपर के हमने अपर्याप्त लिए ही नहीं, सब जगह हमने पर्याप्त पर्याप्त ही देखते आए थे। उक्त स्थितिबंध का काल पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के समान है अंतर्मुक्त।
इसमें
क्या सूक्ष्म वनस्पति, इसीलिए हमने पहला अपर्याप्त निकाल दिया था, मात्र ऐसा लिखो सूक्ष्म वनस्पति का ही, उसी का अर्थ होता है सूक्ष्म निगोध और सूक्ष्म निगोध अपर्याप्त। पहला अपर्याप्त निकाल दो, दोनों आ गए। अनुत्कृष्ट का वो अंतर्मूर्त ही होगा ना, क्योंकि पंचेंद्रिय अपर्याप्त में हम देख के आए थे ना पहले। एक मिनट, पंचेंद्रिय अपर्याप्त वगैरह वगैरह जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त देखा था, 48 पेज पर नीचे की लाइन, नीचे के पहले का।
हाँ, उनको
छोड़कर बाकी में घटित होता है
अंतर्मूर्त कर गए, अंतर्मूर्त लेना,
यानी सूक्ष्म निगोध और सूक्ष्म निगोध अपर्याप्तों में। दोनों एक ही, सूक्ष्म निगोध अपर्याप्त लिखना है, मैंने सूक्ष्म ऐसा लिख सकते हैं सूक्ष्म निगोध और सूक्ष्म निगोध अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोध में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। और आयु का काल लोक के समान है। आयु बंध हमने देखा था हमेशा उत्कृष्ट बंध तो एक समय के लिए होता है और अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक होता है। जगन्य भी और उत्कृष्ट भी सब जगह लगा है, क्योंकि पहले समय में उत्कृष्ट हो सकता है, बाद में अनुत्कृष्ट हो जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म होता ही नहीं, ये निगुत की बात है। यानी दो जगह दो अलग अलग शब्द वापरे उन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा एक नहीं है। एक तो सूक्ष्म निगुत पहला, या उसको सूक्ष्म वनस्पति का एक, ये तो सामान्य हुआ। और फिर सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त, वो निगुत शब्द निकाल भी दो तो भी चले। एक बार सूक्ष्म वनस्पति का एक लिखा और फिर सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त लिखा, ये दो अलग अलग हुए ना। पहले में, पहले भेद में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए, दूसरे भेद में मात्र अपर्याप्त आए, तो भी वही बात लागू होती है, ये कहना था। हाँ, यानी बाकी में तो शेष में तो एक समय घटित होगा, शेष अपर्याप्त में एक समय और अंतर्मुहूर्त, और इसमें जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। आगे बढ़ी ना। कल तो कुछ समझ में नहीं आया था, आज लगता है कुछ समझ में। हाँ हाँ, सैचुरेट हुआ था ना। आगे पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में सात कर्मों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। क्यों अंतर्मुहूर्त बोलो? हाँ, मार्गणा पलट जाती है ना, योग पलट जाता है, उसका काल अंतर्मुहूर्त है। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है। उत्कृष्ट का एक समय, अनुत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अच्छा अच्छा, हमेशा हम ओघ में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अब यहाँ भले योग पलट जाए, परंतु आयु का बंध तो अंतर्मुहूर्त होता ही रहेगा। वो योग के काल से आयु बंध का काल बड़ा है, तो उसने आयु बंध शुरू किया है। अनुत्कृष्ट वो पहले समय में उत्कृष्ट किया, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ, योग पलट गया, आयु तो बनती रही, तो उस योग में एक समय घटित हुआ। वो योग के अंत में आयु कर्म शुरू किया ना बांधना, योग पलट गया। ज्यादा होगा ऐसे लगता है ना, योग का काल छोटा है ना। अंत में शुरू किया, इतना ले लो। उत्कृष्ट काल तो अंतर्मुहूर्त पूरा योग का काल हो, आयु का बंध होगा, हम अंतर्मुहूर्त तो जो यथायोग्य ले सकते। इसी प्रकार वैक्रियक कायोगी, वैक्रियक कायोग से पलटकर मनोयोग हो गया, वचन योग हो गया, वहां पर घटित होगा। आहारक का योगी और क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए। वहां भी क्रोध वो पलट कर आने में कषाय हो गया, आयु तो बनती रही। कायोगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल लोक के समान है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के लिए, क्योंकि एक इंद्रिय में मात्र काय योग ही है। औदारिक काय योग कहेंगे तो कितना होगा? अनुत्कृष्ट काल लंबा काल कितना होगा?
22।
एक ही काय योग कैसे रहेगा? वो तीन पल्ले में तो मनोयोग वचन योग होगी कि
ये तो कुछ कम 22 होगा।
22,000 वर्ष में अंतर्मूर्त कम, क्योंकि शुरुआत में औदारिक मिश्र होगा, बाद में औदारिक का युग चालू रहेगा, एक केंद्रीय में रहेगा, बीच बीच में मिश्र होगा ना शरीर, कारमान का कारमान नहीं भी होगा मान लेते, फिर भी मिश्र का युग तो होगा ही होगा बीच में। शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती, हर बार हर एक पर्याय से दूसरे में गया, बीच में कारमान हो या ना हो, औदारिक मिश्र तो होगा ही होगा। नहीं नहीं, वो अंतर्मूर्त तो होगा ही ना, लगातार औदारिक मिश्र में रहेंगे तो लब्धि अपर्याप्तकों की बात है, वो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगी ना, लगातार वो लब्धि अपर्याप्तक के अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होते। यहाँ मात्र का योग लिया, यहाँ का योग में कारमान का योग आ गया, औदारिक मिश्र आ गया, औदारिक का योग आ गया, मैंने एक केंद्रीय में लगातार रहने का काल लिया, मैंने इसलिए पूछा औदारिक का योग की क्या बात होगी, ख्याल में है बात। अब यहाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कह रहे हैं, सामान्य का योग लिया, क्योंकि वो एकेंद्रीय के योग्य भले उनमें बीच बीच में उत्कृष्ट हो जाए, परंतु कायोगी की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा, कायोगी की अपेक्षा उत्कृष्ट पंचेंद्रिय में होगा, इसलिए अकेले एकेंद्रियों की बात की तो हमने असंख्यात लोग या अंगुल के असंख्यात विभाग में लौट लौट कर उसको तो उत्कृष्ट होता रहा था, यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ कायोगियों का उत्कृष्ट तो पंचेंद्रिय में ही नहीं है, और एकेंद्र में लगातार रहा तो अनुत्कृष्ट रहा, कायोगियों की अपेक्षा अनुत्कृष्ट ही है लगातार, समझ में आती मंजू बात नहीं। देखो हमने अभी भी एकेंद्रीय की मार्गना पड़ी थी, एकेंद्रीय में लगातार कितने काल तक रहता है, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जब एकेंद्रियों में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात करेंगे, एकेंद्रीय की अपेक्षा लगाई तो एकेंद्रीय के लिए जो उत्कृष्ट एक सागर जो उसके अनुपात में जो है वो उत्कृष्ट है, तो वो जो नहीं होगा तो अनुत्कृष्ट होगा, तो क्या अनुत्कृष्ट एकेंद्रियों में अनुत्कृष्ट लगातार इतने काल तक असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा अनुत्कृष्ट? तो नहीं, वो लौट कर बाद में बीच में कभी ना कभी उत्कृष्ट होता ही रहेगा, तो वो कब होता है हमने अभी देखा था, सामान्य एकेंद्रियों की अपेक्षा बात करेंगे तो असंख्यात लोक काल में तो अनुत्कृष्ट रहता है, बाद में उत्कृष्ट हो गया होगा, सूक्ष्म में गया तो हमने देखा था अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण काल के बाद तो उनके लिए जो उत्कृष्ट है उतना होगा ही होगा। अब यहाँ क्या बात हो रही है, कायोगी की, कायोग में रहते लगातार कायोग किसके रहेगा, तो एक इंद्रियों के होगा, क्योंकि पंचेंद्रियों के तो तीन योगों में से अंतर्मूर्त में पलटेगा, द्विंद्रियादि को दो योग में से वचन योग कायोग में से पलटता रहेगा, एक इंद्रियों में कायोग ही लगातार है इतने काल तक, परंतु काय योग होने पर भी वो एकेंद्रिय का उत्कृष्ट उनका उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि काय योगी तो पंचेंद्रिय जीव भी है,
मार्गणा का उत्कृष्ट,
हाँ मार्गणा का उत्कृष्ट नहीं होगा, काय योगियों के लिए उत्कृष्ट कहाँ होगा, पंचेंद्रिय में होगा, और उसकी अपेक्षा ये सारा क्या है, अनुत्कृष्ट है, तो लगातार अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहा, तो असंख्यात पुद्गल पर। कायोगियों का उत्कृष्ट पंचेंद्रियों में होगा, इसलिए यहां असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कह सकते हैं। अभी आए, आयु कर्म का काल मनोयोगियों के समान है, क्योंकि कायोग पलट कर अन्य योग हो गया, आयु बनते बनते तो एक समय भी घटित होगा, उत्कृष्ट वैसे एक समय के लिए होता है, परंतु अनुत्कृष्ट भी एक समय घटित हो सकता है, ख्याल में ये बात। इसी प्रकार अब अन्य जो वेद मार्गना में घटित करे, नपुसक वेदी और असंगी जीवों के जानना चाहिए, नपुसक वेद में सात कर्मों का उत्कृष्ट बंध हम कहेंगे, मिनिमम एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुख, अनुत्कृष्ट का तो अनुत्कृष्ट का एक समय घटित होगा कि नहीं होगा? होगा ना,
होगा।
क्योंकि कोई वेद है उसके भव के अंत में उत्कृष्ट किया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, मरकर वेद पलट गया, अन्य वेद में उत्पन्न हुआ, स्त्री या पुरुष में उत्पन्न हुआ, तो ये बात घटित हुई। और लगातार नपुसक वेदी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक एक इंद्रिय में रहा तो उसके नपुसक वेदी के लिए वो अनुत्कृष्ट होगा, क्योंकि नपुसक वेद में उत्कृष्ट किसके होगा? संगी पंचेंद्रिय में होता है, चारों गति में हमने देखा था। अब कहते असंगी जीवों में भी ऐसा ही, क्योंकि एकेंद्रीय भी तो असंगी है, और असंगी जीवों के लिए उत्कृष्ट कब होगा? संगी जो असंगी पंचेंद्रिय जो है उसमें उत्कृष्ट होगा, और उसमें से लगातार एकेंद्रीय में रहा इतने लंबे काल तक, तो उसमें भी यही बात घटित होगी, ये बात बताना चाहते हैं। क्योंकि असंगियों में एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक सब अचेंद्रीय, असंगी पंचेंद्रीय तक, इनके आयु कर्म का काल ओह के समान है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जैसे योग में एक समय घटित हुआ था अनुत्कृष्ट का, क्योंकि योग पलटता है, क्रोधमान में भी वो पलटता है, तो वो भी एक समय हुआ था, परंतु क्या नपुसक वेद को रहते हुए आयु कर्म का अनुत्कृष्ट बंध एक समय के लिए हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेद पलटता नहीं है। एक कहां लिखा है, यहां लिखा है। ये इसे यदि योग जैसे वेद पलटता होता तो यहां भी एक समय घटित होता, दलील ख्याल में आई ना, क्योंकि ऐसे कहीं कहीं प्ररूपना होती है ना, वेद भी पलटते रहते हैं, तो पलटते होते तो यहां एक समय वाला घटित हो जाता, तो वेद में घटित नहीं होता है, तो वेद उस भव के लिए तो बदलता नहीं है। कैसे? कैसे? उसी एक भव के रहते हुए पूरे भव में वही भव रहे, वही वेद रहता है, एक भव में वेद पलटता नहीं है, ऐसी प्ररूपना हो रही है विद्वानों के द्वारा। वो तो रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण भी देते सब जगह, और सब जगह हमने यही उदाहरण सुना है।
इंदिरा गांधी वो बोलते हैं अमिताभ बच्चन डांस करता तो स्त्री वेद का उदय हो जाए पिक्चर में।
कैसी कैसी प्ररूपना चलती है,
वेद का कार्य क्या है ये मालूम?
कैसे नहीं मालूम, थोड़े नहीं मालूम
कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो।
नहीं, उनके लगते पुरुष जैसा बिहेवियर है वो तो वेद का उदय, वो तो घोड़े पर बैठी लड़ाई करने के लिए तो पुरुष वेद का उदय हो गया, ये ऐसा थोड़ी होता है।
गाना बजा दे खूब लड़ी मर जा पुरुष वेद।
हाँ देखो देखो, अभी हम औदारिक कायोगी की बात करेंगे, यानी आयु कर्म का ओग के समान क्यों कहा समझ में? नपुसक वेद तो चलता रहेगा, आयु का बंध होते होते वो तो पलटता नहीं है, इसलिए उसका अंतर्मूर्त घटित होगा ही अनुत्कृष्ट का। वैसे जो असंगी तो असंगी ही रहेगा, उसका तो आयु के बंध के काल में वो तो असंगी से मार्गणा पलटेगी नहीं, ये बात होती है। यहाँ पीछे लिख के रखो 51 पेज। यानी नपुसक वेद में आयु का अजघन्य बंधन, अजघन्य ने क्या कहा हमने? अनुत्कृष्ट। जघन्य से अंतर में, हाँ एक समय नहीं है क्योंकि वेद पलटता नहीं ना। जैसे योग पलटता है वैसा नहीं। जब हम ऐसी कोई बात उठाते तो कहाँ लिखा है, कौन से पुस्तक में लिखा है? उनके पेज पेज पर लिखा है, वे कहाँ कहाँ बताएंगे, और पूछने वाले को बताए कि पूछेंगे हम, लाओ पुस्तक लाओ हम बताते हैं, तो उनके पास आगम भी नहीं होता, फिर भी प्रूफ चाहते हैं। अभी आगे औदारिक का योगी जीव में, मैंने पूछा था ना प्रश्न, का योगी में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित हुआ, क्या असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक औदारिक का योग रहेगा किसी को मंजू बेन? औदारिक का योग रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि औदारिक का योग के लिए उसके पहले में एक अंतर्मूर्त औदारिक मिश्र भी तो होगा कि नहीं होगा? हर एक बार जन्म लेगा तब निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र होगा, इसलिए लगातार तो इतना लंबा 22,000 वर्ष में अंतर्मूर्त कम इतना ही रह सकता है। अब यहाँ क्या लिखते देखो, औदारिक का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट सिद्धिबंध का कालोक किसमें? उत्कृष्ट में तो कुछ अंतर नहीं है, वैसा ही कथन होगा। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि वो तो हमारे आपके भी जो कुछ है तो पलट गया तो हम कहेंगे एक समय में पलट गया, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष। तो ये क्यों कहते ये बात ख्याल में आनी चाहिए। यहाँ एक ही वह की उत्कृष्ट आयु है एक इंद्रिय पृथ्वी का, एक की 22,000 वर्ष, उसमें कुछ कम किया औदारिक मिश्र का काल घटाया, 22,000 वर्ष में से अंतर्मूर्त घटाए औदारिक मिश्र का। आयु कर्म का काल मनोयोगियों के समान है,
आयु कर्म का अनुत्कृष्ट भी एक समय होगा औदारिक काल
में, वही तो मनोयोगियों के समान, उसका अर्थ ही वही होता है। आयु बंध शुरू किया, अनुत्कृष्ट बंध उसने हो रहा था, यानी पहले समय में उत्कृष्ट हुआ, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हुआ। यह जरूरी नहीं कि वो उसके मार्गणा के उत्कृष्ट बांध रहा है, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बांधा और फिर कायोग पलट गया, यानी औदारिक कायोग पलट गया। क्या? हाँ, परंतु हमारा आपका कायोग से वचन योग हो गया, औदारिक का योग से योग पलट गया। यहाँ एक इंद्रिय की बात मत सोचो, यहाँ अन्य जीवों को बात करेंगे, द्विंद्रिय आदि कोई भी ले लो, यहाँ दो योग या तीन योग है, वहां तो योग का पलटना होगा ही होगा। जब एक समय घटित करते हैं तो द्विंद्रिय आदि ऊपर के जीव ले लेना, यानी योग पलट जाता है, योग पलटने से एक समय घटित होता है। यानी अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय घटित क्यों होता है? योग पलट गया, इसलिए आयु कर्म का बंध शुरू किया, एक समय अनुत्कृष्ट किया, और मनोयोगी होगा या वचन योगी होगा कुछ होगा। अब आगे औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कैसा हुआ? उसका स्वामी तो अंतिम समय में लिया था ना हमने, जो शरीर पर्याप्त पूरी होगी ऐसा लिया था हमने स्वामी तो, याद है कि भूल गए? निकल निकल, स्वामित्व में लेना है, मिश्र का योग में लेना है। 43 होगा शायद, 44 में वैकृत लिया है, मिश्र का योग कहाँ लिया? ये जघन्य की बात है, उत्कृष्ट की बात लेनी है। कृष्ण वेश्या विशुद्धि अभिनिबोधि उसके पहले श्री वेद वाले 36 के नीचे मिला, नीचे से चौथी लाइन औदारिक मिश्र का योग में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो मिथ्या दृष्टि संगी है, तत्प्रायोग संकलेश परिणाम वाला है, तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होने वाला है और तत्प्रायोग उत्कृष्ट संकलेश परिणामों से युक्त है। अच्छा, नहीं वो अन्य परिणामों से भी वो उत्कृष्ट बंध कर रहे ऐसा लिया होगा शायद। नहीं नहीं, वहाँ यहाँ वहाँ एक समय नहीं बताया,
अंतिम समय बताया।
अभी देखो यहाँ
प्रत्येक समय वाला,
यानी अन्य परिणाम होते हुए भी उत्कृष्ट स्थिति बंध करता रहा ऐसा लेना ना। उत्कृष्ट की जरूरत नहीं, अंतर्मूर्त तक होता रहे, उत्कृष्ट के लिए ये कंडीशन नहीं है। अनुत्कृष्ट एक समय में नहीं पलटता, अनुत्कृष्ट तो लगातार अंतर्मूर्त होगा ही होगा, पर उत्कृष्ट का बंध एक समय के लिए हो सकता है। हाँ, यहाँ उन्होंने अंतर्मूर्त लिया, देखो ना। उत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त लिया। यहाँ स्वामित्व में तो अंतिम समय लिया था ना। उसके बाद तो बढ़ जाता है ना। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर बंध का परिणाम नहीं नहीं बंध का प्रमाण बदलेगा जरूर। अभी पर्याप्त हुआ है तो बंध का प्रमाण नहीं, वही तो हम नहीं कह सकते हैं। ये आयु की बात चल रही थी, कैसे चल रही थी? ये सात कर्म की बात चल रही थी कि आयु की? हाँ, चलो अभी आगे बढ़ेंगे। यानी ये प्रश्न है यहाँ पर कि वहां तो एक समय अंतिम समय में बताया था, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पूर्व उसको उत्कृष्ट स्वामित्व बताया था, परंतु यहाँ उसको अंतर्मूर्त लिया। उत्कृष्ट स्थिति लगातार अंतर्मूर्त तक बांधता है ऐसा इसमें लिखा है। उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन है ऐसा जब पूछा था, स्वामी का ही अर्थ क्या है? वो तो अंतिम समय बताया उन्होंने। हाँ, तो अंतिम समय में उत्कृष्ट करेगा, तो उसके पहले समय में अनुत्कृष्ट है ऐसा सिद्ध होता है ना। लगातार काल अंतर्मूर्त बताए, अनुत्कृष्ट का तो ठीक है, जगन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बताया, यानी उनके बीच में भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट होता रहा, ये घटित होता है ना। यानी उस योग के रहते हुए भी उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट भी होता है। हाँ, औदारिक मिश्र में आयु कर्म का काल योग के समान है, क्योंकि औदारिक मिश्र ही आयु कर्म को बांध सकता है। अभी आहारक मिश्र को भी उन्होंने लिया है यहाँ पर। आहारक मिश्र का योग में आयु कर्म का काल मनोयोग के समान है, यहाँ तो एक समय भी घटित होगा क्योंकि योग पलटेगा। कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, यानी दोनों समय उतना का उतना हुआ। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। देखो, कारमान काय योग्य, ये इसका कारण कौन बताएगा? मंजू भाई, ऐसा क्यों? क्या लिया, उत्कृष्ट का एक समय और दो समय, और अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट तीन समय, ऐसा क्यों लिया? आप कहेंगे मतलब कौन के नहीं
आप कहेंगे?
हाँ हाँ हाँ, तो क्यों ले, ऐसा क्यों लिया? अनुत्कृष्ट के लिए तीन समय लिए और उत्कृष्ट के लिए दो ही समय लिए। एक इंद्रियों में तीन समय तक कारमान का योग होता है और पंचेंद्रियों में दो ही समय होता है, तीन नहीं। और कारमान का योगियों में उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? तो पंचेंद्रिय कारमान का योगी वाला करेगा।
पंचेंद्रिय में से मरकर जो कारमान का योग में है उसको
कहीं भी हो, एक इंद्रिय से भी पंचेंद्रिय में क्यों ना आया हो, हम ये तो दो मोड़ की बात करें, दो मोड़ की बात करें, कितना बंद करे उसकी बात मैं नहीं पूछ रही हूँ। कारमान का योग दो ही समय है, ऐसे जीव कौन से हैं? यानी कोई भी हो सकते, एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, परंतु तीन मोड़ तो एक इंद्रिय के ही हो गए, ये बात है। और एक इंद्रिय तो इनमें से उत्कृष्ट बंध किसको होगा? पंचेंद्रियों को होगा, एक इंद्रिय को नहीं होगा। अब वो एक इंद्रिय में से आया कि पंचेंद्रिय का, ये तो बात हमने गौण रखी। पंचेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आने वाला उसका बंध ज्यादा होगा, क्योंकि एक इंद्रिय से जो पंचेंद्रिय में आता है वो असंगी जैसा बंध, एक इंद्रिय जैसा नहीं, असंगी जैसा।
वो तो निश्चय का योग
नहीं, कारमान का योग। एक इंद्रिय से आयो या असंगी से आयो, विग्रह गति में बंध असंगी जैसा होता है। तो ये समझ में ना, उत्कृष्ट स्थिति बंध, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट होता है, यानी वो दो समय एक इंद्रिय के नहीं होते वो बात नहीं है, परंतु एक इंद्रियों के उत्कृष्ट नहीं होगा ये बात है। और अनुत्कृष्ट जो है वो तीन समय जो बताए हैं, हाँ वो एक इंद्रिय में होते हैं। विशेषार्थ अब यहाँ कुछ प्रकाश डालेंगे। औदारिक मिश्र काय योग में आयु बंध लब्धि पर्याप्त कुंभ के ही होता है, इसलिए यहाँ आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का काल ओग के समान बन जाता है। यानी पूरा अंतर्मुख गति होता है, अनुत्कृष्ट का भी होगा। शेष जिन योगों में आयु कर्म का बंध कहा है उनका जघन्य काल एक समय होने से उनमें आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय कहा है। एक्चुअली योग एक समय की बात नहीं है, परंतु योग में आयु का बंध शुरू हुआ और योग पलट गया, इसलिए एक समय घटित होता। मैंने यहाँ क्या कहा, योगों में आयु कर्म का बंध जिसका जघन्य काल एक समय होता है, यानी ये योग पलटने से एक समय होता है। किंतु आहारक मिश्र का योग में कुछ विशेषता है, उसका यद्यपि जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है तथापि वहां आयु कर्म के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय कहने का कारण यह है, कोई जीव आहारक मिश्र का योग का एक समय काल शेष रहने पर भी आयु कर्म का बंध कर सकता है, इसलिए यहां एक समय बन जाता है। यानी एक समय में उसका आहारक का योग हुआ ना, आहारक मिश्र से आहारक हो गया। कार्मण का योग और अनाहारक जीव में उत्कृष्ट स्थिति बंध का स्वामी कौन होता है, इसका पहले विचार कर आए। उसे देखते हुए ज्ञात होता है ऐसा जीव अधिक से अधिक दो विग्रह लेकर ही उत्पन्न होता है, पंचेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आया है या एक इंद्रिय से भी क्यों ना आए, ये दो विग्रह में ही पहुंच जाता है। इसी से यहाँ पर सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, शेष कथन सुगम है। ये ख्याल में आई ना बात? अब स्त्री वेद और पुरुष वेद में, नपुंसक वेद में तो हमने वो असंख्यात पुद्गल परार्थन वगैरह वगैरह वो बात देखी। अब स्त्री वेद यानी पुरुष वेद, ये तो पंचेंद्रिय है इतनी बात घटित होती है। सात कर्मों के उत्कृष्ट सिद्धिबंध का काल ओक के समान है, एक समय अंतर। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय। किसी स्त्री वेदी ने मरण के एक समय पूर्व उत्कृष्ट का बंद किया, फिर एक समय के लिए अनुत्कृष्ट का किया और फिर मरकर अन्य वेद में उत्पन्न हुआ तो एक समय घटित हुआ। और उत्कृष्ट काल क्रम से पल्योपम शत पृथक्त्व प्रमाण, ये स्त्रीवेद के लिए, और सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण ये पुरुष वेद के लिए। ये जरूरी नहीं कि वो इतने काल में फिर दोबारा उत्कृष्ट बंध करे। आयु कर्म का काल ओघ के समान, एक समय उत्कृष्ट के लिए, अनुत्कृष्ट के लिए अंतर्मुख। अपगत वेदियों में सात कर्मों का काल मनोयोगियों के समान है। नहीं, अनुत्कृष्ट में भी हम
उत्कृष्ट का तो वो अंतर के समय एक समय
देखा, उत्कृष्ट का तो एक समय होगा
और अनुत्कृष्ट का अंतर्मुर्त होगा।
उत्कृष्ट का भी अंतर्मुर्त होगा, उत्कृष्ट का, क्योंकि एक ही स्थितिबंध अंतर्मुर्त तक चलता है। उपशम श्रेणी उतर कर जब नीचे होने दो, पर स्थितिबंध एक एक समय में बदलता नहीं है। जैसे स्थितिबंधापसरण ऊपर चढ़ते हुए बंद घटा, विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ रही थी, अंतर्मुर्त के बाद वो बदलती है। स्थिति कांड घात और स्थिति बंधापसरण होते हैं, अनुभाग कांड घात होते हैं, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में तो बदलते हैं, एक एक समय में प्रमाण नहीं बदलता। अभी यहाँ क्या कहे हम देखेंगे। उत्कृष्ट का काल लोक के समान है, उसका अर्थ क्या है? और मनोयोगियों में सात कर्मों का कितना लिया था देख लो। अभी उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, अपगत वेदी का ही काल अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट कब होता है? श्रेणी उतरते समय, तमाम उसके पहले जो अंतर्मुहूर्त है तब होगा वो। और जघन्य एक समय कैसे घटित होगा बोलो? अभी अंतिम स्थिति बंध में आया और एक समय में मरण हुआ तो वो सवेदी हो गया। अभी वो कितना बंद करता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। उत्कृष्ट करके एक समय में मनाओ। या अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे होगा? सवेद में से अपगत वेदी हुआ तो वो अपगत वेदी के अनुत्कृष्ट ही था, क्योंकि उत्कृष्ट तो उतरते समय होगा, तो एक समय में मर गया, चढ़ते समय मरा। अपगत वेदी होकर मरा। अब यहां तो आयु बंध की कोई बात ही नहीं है, और अपगत वेदियों में अनुत्कृष्ट कितने काल तक रहेगा? उत्कृष्ट, क्योंकि अपगत वेदी हुआ, चढ़ना शुरू किया था, अपगत वेदी हुआ, वहां से लेकर उसका अनुत्कृष्ट ही होता रहा। उतरने में कहां ले जाते हो? दसवें तक ही है ना वहां पर बंद, वहां तक अंतर्मुद घटित हुआ। बंद रुक गया। हाँ, वहां पर भी ले सकते हैं। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल, उसमें भी वो उत्कृष्ट का बंध काल छोड़ देना, उतरने का काल बड़ा होगा तो जब तक बंध शुरू किया था ना दसवें में, तब से लेकर गिनना उसको, है में है कि नहीं बात। स्थिति बंध कहां से होता है, दसवें तक ही होता है, तो ग्यारहवें वाले को तो नहीं लेना है उसमें, तो या तो चढ़ते समय अपगत वेदी होकर फिर दसवें तक ले लो। आप कहेंगे उतरते समय काल ज्यादा है, तो दसवें में आते ही उसका अनुत्कृष्ट बंध हो रहा है और वहां से लेकर सवेदी होने के पहले वह उत्कृष्ट है, उसके पहले तक ले लो।
तो भी मन समान होता है,
बिल्कुल होगा। कितनी बार हमने पढ़ा है, उतनी उतना ही बंध लगातार अंतर्मुहूर्त तक होता है। ये लगातार बंध काल कहो या स्थिति कांड घात का काल को, दोनों समान है। जितने काल तक स्थिति कांड घात होता रहे उतने काल तक समान बंध होता है। अभी इसमें कुछ प्रश्न है? हमने देखा था ना अनेक अलग अलग परिणामों के कारण उतना ही स्थिति बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ये तो बात पहले भी हो चुकी है। ये तो हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय में छह कर्मों का काल होता है। अभी सूक्ष्म सांप्राय में ऐसा ही लेना, एक समय में होगा उत्कृष्ट, यानी कब होगा तो उतरते समय उत्कृष्ट होगा, एक समय में मरण होगा तो एक समय होगा, मरण नहीं होगा तो लगातार अंतर्मुहूर्त तक होगा। अनुत्कृष्ट का तो होता ही है विशेषण, अपगत वेद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है शेष कथन सुगम में। परंतु ये केवल इतनी अपेक्षा नहीं लगती, अवगत वेदी का एक समय है इसलिए उत्कृष्ट एक समय नहीं कह सकते, क्योंकि अवगत वेदी का एक समय यदि नवे में अवगत वेदी हुआ एक समय में, वहां तो उत्कृष्ट था नहीं, उत्कृष्ट तो उत्तर हमें स्वामित्व देखा है, हम तो स्वामित्व के अनुसार उसका विचार वो तो हमने कर लिया। विभंग ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है, तो हमने देखा ना संगी पंचेन्द्रिय साकार उपयोग वगैरह सब लगाया, पर्याप्त से पर्याप्त हुआ है, पर्याप्तियों के ही होता है विभंग ज्ञान, तो उसके उत्कृष्ट संकेत परिणाम में तो ओघ के समान है, उत्कृष्ट स्थितिबंध मिनिमम एक समय, अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, अन्यत्र अनुत्कृष्ट का तो लगातार अंतर्मुहूर्त जघन्य काल बताया जाता है, अब यहाँ कितना बताया है एक समय, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरोपम है, वो अनुत्कृष्ट ही रहा लगातार, उत्कृष्ट किया ही नहीं, तो 33 सागर जो नरकायु है। विभंग ज्ञान का है ना, सर्वर सिद्धि वाले को लेना कि नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? हाँ तो हुआ वहां सारे सुअवधि वाले, हाँ। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का एक समय, अनुत्कृष्ट जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त। तीर्यंच और मनुष्य, हाँ कितनी बनते वो नहीं, वो लगातार का काल की बात चल रही है। स्वामित्व अगर हम बताते हैं विभंग ज्ञान में 33 सागर बांधने वाला मनुष्य या मत्स्य लेंगे? विभंग ज्ञान में 33 सागर कौन बांधेगा? जो नर का भी बांध रहा है, कौन बांधता है? हाँ मनुष्य या तीर्यंच, उसमें हम मत्स्य या मनुष्य लेते हैं। अभिन्न बोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जघन्य भी यानी वो कौन सा लिया था हमने, मिथ्या तो के सन्मुख लिया था ना चौथा गुण स्थान वाला, स्वामित्व कौन लिया था है ना, चौथे वाला मिथ्यात्व के सन्मुख लिया था, उसका भी एक अंतर्मूर्त तो उत्कृष्ट हो सकता है। इसका अर्थ जगन्य एक समय नहीं लिया है, अंतिम समय में लिया है ना, परंतु अंतर्मूर्त तो कितना होता है ये समझना चाहिए। तो वैसे वहाँ पर भी होता होगा पता नहीं,
तो यहाँ पे एक समय तो नहीं घटित, क्योंकि एक समय एक अंतिम समय में खाली उत्कृष्ट स्थिति का मतलब दिया,
ऐसा नहीं होगा ना, तभी तो जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया,
संबंध अंतर्मूर्त
वो समान स्थिति का बंध होता होगा इसलिए वो अंतर्मूर्त बताया। वो ऊपर लिखा ना अभिनिवेश सत्तन का उत्कर्ष जहन उत्कर्ष जहन और उत्कर्ष ने अंतर्मूर्तम बराबर। अब अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का ये अभिनिबोधिक आदि में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त जो हर जगह देखा था और उत्कृष्ट काल साधिक छासर सागरों का सम्यक में रहने का उत्कृष्ट काल लिया साधिक छासर सागरोपम यानी वो मतिशुद्ध अवधि ज्ञानी वाले हैं, सम्यक दृष्टि है, तो साधिक छासर सागरोपम क्यों लिया।
हाँ
वेदक हुआ सम्यक दृष्टि रखना है उसको, पहले औपशमिक हुआ फिर वेदक हुआ फिर क्षायिक हुआ उसको मात्र सम्य दृष्टि रखो ना अनुत्कृष्ट सम्यक्त्व में अनुत्कृष्ट, वो नीचे मिथ्यात्व के सम्मुख हुआ ही नहीं है। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट रहा ना, वो उत्कृष्ट नहीं था वो अनुत्कृष्ट है। अब उसको जघन्य भी कराओ ना अपना कुछ नहीं जाता है, यानी उपशमिक फिर वेदक और फिर क्षायिक। मिलकर इतना होगा ना, आयु कर्म का काल ओक के समान है। मन परे ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। देखो यानी ये जो गिरने के सन्मुख है उसके भी अंतर्मूर्त तक उतना ही बंध है, ये घटित होता है इसमें से। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण, यानी लगातार अनुत्कृष्ट ही रहा।
एक समय किसे हुआ उत्कृष्ट,
अनुत्कृष्ट का स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। ऊपर क्या है
एक समय में भरण के अनुत्कृष्ट स्थिति की बात चल रही है, मन पर ज्ञान छूट जाएगा उसका मन एक समय में मन पर ज्ञान छूट जाएगा
वो तो जगन्य है अभिमुख वाला। हाँ हाँ उत्कृष्ट स्थितिबंध का एक समय वाला है परंतु उसको यहाँ अंतर्मूर्त वाला लिया तो ठीक है, परंतु अनुत्कृष्ट एक समय कैसे हुआ ये बता दे। मरण की अपेक्षा ले लो, उत्कृष्ट अंत में होता है जब चौथे के सन्मुख यानी फिर मन पर एक ज्ञानी हुआ और एक समय में मरा, ऐसा कहना पड़ेगा। वही तो होता है, जगन्य काल भी अंतर्मुहूर्त लिया है। उत्कृष्ट के बाद अगर अनुत्कृष्ट करता है तो की बात है ना, ये उसका उत्कृष्ट होता है, वो तो ठीक है। हमने अगर वहाँ मरण नहीं करते तो अनुत्कृष्ट में एक समय कैसे होगा, ये प्रश्न है। अभी 10 बजने को आए ना हाँ विभंग ये पूरा कर दे, फिर कल ले लेंगे दोबारा। हाँ मरण की अपेक्षा फिर भी उत्कृष्ट करके अनुत या बन पर ज्ञान प्रकट होते ही मरण हुआ। तो उत्कृष्ट का समय घटित होगा, वो तो उन्होंने अंतर्मुहूर्त जोता है। सन्मुख हुआ तो उत्कृष्ट होने लगा, वहाँ तो एक समय घटित हुआ परंतु वहाँ उन्होंने अंतर्मुहूर्त बताया और अनुत्कृष्ट में एक समय बताया, यही घटित नहीं हुआ। कैसे हुआ अगर सन्मुख है तो कैसे हुआ? अरे तो वो उत्कृष्ट नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है। चौथे में से फिर वो अंतर्मुहूर्त में ऊपर आ गया और मरण हो गया।
शायद चौथे में से छठे में गया,
छठे में नहीं सातवें में,
सातवें में गया और एक समय में मर गया। और एक समय अच्छा उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा
उसको कहाँ केवली को मालूम पड़ता है ना नहीं पर चौथे से सातवें में आते ही एक समय में मरण है।
मरण तो है
वेदक से ही आएगा, नहीं तो आएगा तो वेदक से ही आएगा ऑफकोर्स, परंतु ये पता नहीं लगा। अच्छा ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण, ये तो मन परे ज्ञान का काल ले लिया। आयु कर्म का काल ओक के समान है, वो तो घटित होता है। इसी प्रकार संयत सामायिक छदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयत जीवों के जानना चाहिए। संयता संयतों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। अब जैसे यहाँ अनुत्कृष्ट का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त लिया है, वैसे वन पर्य में तो लेना था तो नहीं लिया। आयु कर्म का काल लोक के समान है। चक्षु दर्शन में उक्त काल त्रस पर्याप्तकों के समान है, यानी चक्षु दर्शन वालों के रहने का उत्कृष्ट काल लिया है। कितना है सागरोपम शतक कितना है? चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों की बात है। पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों के हमने सागर
1000
सागर, यहाँ सागर 100 सागर पुतक को कहेंगे नहीं, यहाँ तो 1000 सागर और कुछ साधिक हो जाएंगे। क्या कहते हैं अरे तो अवधि दर्शनी और समय दृष्टियों में उक्त काल अवधि ज्ञानियों के समान है, जो हमने मतिशुद्ध अवधि में देखा था साधिक 66 सागर। अब यहाँ रुकते हैं, ज्ञान की बात फिर दोबारा लेंगे कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो। सदा देव।